एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
इस चर्चा में मैं हूं आपके साथ
और मैं भी हूं इस बातचीत का हिस्सा।
आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में झांक रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का नजरिया ही मतलब बिल्कुल बदल दिया। ई.एच. कार की द 20 ईयर्स क्राइसिस।
हाँ।
ये किताब 1919 से 1939 यानी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के जो 20 साल थे ना, उन पर गहराई से नजर डालती है।
बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये किताब लिखी तो गई थी 1939 में, दूसरे विश्व युद्ध की बिल्कुल दहलीज पर।
हाँ।
लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही मतलब ताजी और जरूरी लगती हैं।
सही कहा।
क्यों शांति की कोशिशें बार बार नाकाम हो जाती हैं, है ना? दुनिया के देश असल में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं, ये जो शक्ति का खेल है, पावर का, ये कैसे चलता है, इन सब सवालों को समझने के लिए ना ये किताब एक आईने की तरह।
बिल्कुल। और सोचिए, आज हम अमेरिका चीन के बीच तनाव देखते हैं, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है।
हाँ, ये सब
कार की बातें हमें ये समझने में मदद करती है कि ये सब सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि देशों के बीच रिश्तों की कुछ बुनियादी सच्चाइयां हैं जो बार बार सामने आती रहती है।
सही।
तो आज हमारा मकसद है कार के इन मुश्किल लगने वाले विचारों को, खासकर वो जो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद वाली बहस
हाँ,
है,
वो हर्षी है,
उसे आसान भाषा में समझना।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेखक से ही बात करते हैं। ई.एच. कार ये कोई मामूली अकादमिक नहीं थे, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था।
सही कहा आपने। वो सिर्फ किताबों की दुनिया में ही नहीं रहे, वो लगभग 20 साल है ना, 1916 से 1936 तक
हाँ, करीब 20 साल
ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में राजनायक थे, डिप्लोमैट थे, उन्होंने अपनी आंखों से इतिहास बनते देखा।
बिल्कुल। वो पहले विश्व युद्ध के बाद जब पेरिस में शांति समझौते हो रहे थे 1919 में।
हाँ, वर्साय वगैरह।
हाँ, तो कार वहां ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। उन्होंने वो सब बातें, वो बहसें, वो सौदेबाजियां बहुत करीब से देखी।
तो एक तरह से इनसाइडर थे।
हाँ बिल्कुल। इसी अनुभव ने उन्हें एक अनोखा नजरिया दिया। पहले व्यवस्था को बनते देखा और फिर बाद में एक प्रोफेसर बनकर उसी व्यवस्था का विश्लेषण किया, उसकी चीर फाड़ की।
और शायद इसीलिए उनमें वो शक पैदा हुआ होगा, है ना,
किस बारे में?
कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, कानून, नैतिकता, इनसे दुनिया बदल सकती है या नहीं।
क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि जमीनी हकीकत पर स्वार्थ कैसे हावी हो जाते हैं।
हाँ बिल्कुल।
उन्होंने देखा कि कैसे आदर्श, ऊंची ऊंची बातें देशों के अपने स्वार्थों से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं।
और सोचिए, किताब छपी कब? 1939 में, ठीक तब जब वो पूरी व्यवस्था
ढह रही थी।
हाँ, लीग ऑफ नेशंस वाली, शांति समझौतों वाली, वो ढह रही थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था।
इससे कार की बातों में एक जबरदस्त सच्चाई और तात्कालिकता आ जाती है ना? वो हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वो एक दुनिया को बिखरते हुए देख रहे थे और बता रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
तो ये किताब असल में है क्या, इसका निचोड़ क्या है?
ये एक तरह से पहले विश्व युद्ध के बाद जो उम्मीदों और आदर्शों का माहौल बना था, जिसे आदर्शवाद कहते हैं,
हाँ, यूटोपियनिज्म।
हाँ यूटोपियनिज्म, उसकी कड़ी आलोचना है। कार का मानना था कि ये आदर्शवाद इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि इसने शक्ति मतलब पावर की असलियत को अनदेखा कर दिया था।
अच्छा।
उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि ये सोचना कि सभी देशों के हित एक जैसे हैं, सब शांति चाहते हैं,
हाँ, हितों का सामंजस्य या हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं,
ये एक भ्रम है। और ये भ्रम फैलाया किसने?
ये फैलाया उन ताकतवर देशों ने जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था से खुश थे, संतुष्ट थे, जो चाहते थे कि सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा है, स्टेटस को। हाँ बिल्कुल। कार्न ने कहा कि असलियत में तो देशों के बीच हमेशा शक्ति बढ़ाने और अपने हितों को साधने की खींचतान चलती रहती है।
यही कड़वी सच्चाई है।
और उन्होंने शक्ति के अलग अलग रूपों की भी बात की। ऐसा नहीं कि शक्ति सिर्फ सेना या हथियारों से ही आती है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 3 तरह की शक्ति बताई।
हाँ बताइए।
एक तो जाहिर है सैन्य शक्ति, फौज, हथियार वगैरह। दूसरी आर्थिक शक्ति, यानी व्यापार, पैसे, संसाधन, इनके जरिए अपनी बात मनवाना।
जैसे आजकल हम देखते हैं ना, देश एक दूसरे पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, सैंक्शंस।
हाँ बिल्कुल वही। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, वो है विचारों पर शक्ति, पावर ओवर ओपिनियन।
विचारों पर शक्ति मतलब?
इसका मतलब है लोगों की सोच, उनके विश्वासों को बदलना, प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया, शिक्षा, इनके जरिए एक खास तरह की राय बनाना।
ओह, ये तो बहुत सूक्ष्म है।
हाँ, सोचिए आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कितना सच लगता है। ये जो अदृश्य सी लगने वाली ताकत है ना, ये बहुत कुछ तय करती है।
तो कार इन्हीं सब विचारों के जरिए 1919 से 1939 के उस 20 साल के संकट को समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कार सिर्फ निराशावादी नहीं थे। उनका मकसद ये कहना नहीं था कि दुनिया हमेशा लड़ती ही रहेगी और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता।
अच्छा, फिर क्या था उनका पॉइंट?
वो एक संतुलन की बात कर रहे थे कि हमें आदर्शों की जरूरत है, लेकिन उन आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए दुनिया की असलियत, यानी ये जो शक्ति का खेल है,
उसे समझना ही होगा।
उसे समझना ही होगा, आदर्श और यथार्थ का संतुलन।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आपने कहा कार की पूरी किताब का निचोड़ दो सोच के टकराव में है, आदर्शवाद यूटोपियनिज्म बनाम यथार्थवाद रियलिज्म। तो आदर्शवाद क्या है?
आदर्शवाद सोचता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। ये तर्क, नैतिकता, अच्छे कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे उस समय का लीग ऑफ नेशंस था,
हाँ,
इन सब में भरोसा करता है। ये मानता है कि अगर सब देश समझदारी से काम लें तो शांति और सहयोग मुमकिन है।
जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, है ना?
हाँ।
वो इसके बड़े समर्थक थे।
हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा है जैसे कोई आर्किटेक्ट एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग का नक्शा बनाए, लेकिन ये ध्यान ना दे कि उसे बनाने के लिए मजबूत नींव चाहिए, सही मटेरियल चाहिए, या भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम भी काम करता है, देखने में बहुत अच्छा पर टिकेगा नहीं।
समझ गई। और दूसरी तरफ है यथार्थवाद।
हाँ, यथार्थवाद ये दुनिया को वैसे देखता है जैसी वो है, ना कि जैसी होनी चाहिए।
मतलब कड़वी सच्चाई।
हाँ, कड़वी सच्चाई। ये मानता है कि देशों के लिए सबसे जरूरी है अपनी सुरक्षा और अपना हित। शक्ति यानी पावर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असली चाबी है, और देशों के बीच टकराव होना वो स्वाभाविक है।
और कार के मुताबिक आदर्शवाद इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसने इस सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था।
बिल्कुल। और यहीं पर वो हितों के सामंजस्य वाली बात आती है।
हाँ, जिसकी कार ने धज्जियां उड़ाई।
हाँ, उन्होंने कहा कि ये विचार कि सबका भला एक साथ हो सकता है, असल में उन देशों का फैलाया हुआ था जो उस समय ताकतवर थे, जो व्यवस्था से खुश थे, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका।
अच्छा।
वो अपने फायदे को दुनिया का फायदा बताकर पेश करते थे ताकि कोई बदलाव ना हो, सब कुछ वैसा ही चलता रहे, स्टेटस को बना रहे।
इससे हुआ क्या जो देश नाखुश थे?
हाँ, जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था से नाखुश थे, जिन्हें लगता था उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें लगा कि ये सबका भला असल में सिर्फ कुछ बड़े देशों का भला है, और इसी नाइंसाफी और गुस्से ने एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार की।
तो ये बहुत जरूरी सबक है, जब भी कोई कहे ये सबके हित में है तो रुक कर पूछना चाहिए
किसके हित में,
असल में किसका हित, कुई बोनो। अच्छा, तो अगर असलियत में शक्ति का खेल चल रहा है तो फिर नैतिकता और कानून का क्या मतलब रह जाता है? कार ने इस पर जो कहा वो थोड़ा चौंकाने वाला है ना?
हाँ, थोड़ा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिकता और कानून कोई आसमान से उतरी हुई चीजें नहीं है, अक्सर ये भी ताकतवर देशों के ही औजार होते हैं।
मतलब कैसे?
मतलब ये कि शक्तिशाली देश अपने कामों को सही ठहराने के लिए नैतिकता का लबादा ओढ़ लेते हैं। वो कह सकते हैं कि हम तो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं या मानव अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं,
जबकि असल मकसद कुछ और हो सकता है।
बिल्कुल, असल मकसद अपना हित साधना हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसकी दिक्कत यह है कि उसे लागू करवाने वाली कोई मजबूत पुलिस या सेना नहीं है।
हाँ, ये तो है।
वो तभी तक चलता है जब तक बड़े देश उसे मानना चाहें या जब तक उनके हित में हो।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो लीग ऑफ नेशंस ही था।
बिल्कुल। जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया या इटली ने एबिसिनिया यानी आज के इथियोपिया पर, तो लीग कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बड़े देश अपने अपने हितों में उलझे थे, वो असल में कार्रवाई करना ही नहीं चाहते थे। ये दिखाता है कि कैसे ताकत की राजनीति के सामने अच्छी अच्छी संस्थाएं भी मतलब बेकार साबित हो जाती हैं।
और इसी से जुड़ी है एक और बड़ी मुश्किल। आपने बताया था शांतिपूर्ण परिवर्तन की समस्या।
हाँ, प्रॉब्लम ऑफ पीसफुल चेंज। मतलब दुनिया तो बदलती रहती है, कुछ देश कमजोर होते हैं, कुछ ताकतवर बनते हैं।
सही।
तो इस बदलते हुए शक्ति संतुलन को बिना लड़ाई झगड़े के कैसे संभाला जाए, ये इतना मुश्किल क्यों है?
कार का क्या कहना था इस पर?
उनका तर्क था कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई वो बहुत सख्त थी। उसका मकसद था हारे हुए देशों, खासकर जर्मनी को हमेशा के लिए दबा कर रखना और विजेताओं का दबदबा बनाए रखना।
एक तरह से बदला लेने जैसी।
हाँ, कुछ हद तक। इसने उन देशों को जो दोबारा ताकतवर बन रहे थे या व्यवस्था से नाखुश थे, शांति से बदलाव लाने का कोई रास्ता ही नहीं दिया।
तो जब बातचीत का रास्ता बंद हो गया,
हाँ, जब उन्हें लगा कि बातचीत या शांतिपूर्ण तरीकों से कुछ नहीं बदलेगा, तो उन्होंने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। नतीजा, दूसरा विश्व युद्ध।
ओह, तो ये बहुत गहरा विश्लेषण है। अगर हम कार की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकलती हैं?
मेरे ख्याल से 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति या पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक हकीकत है, इसे मानना होगा,
चाहे अच्छी लगे या बुरी। दूसरी बात,
जब भी कोई सबके हित या हितों में तालमेल की बात करे, तो थोड़ा शक करें। हमेशा पूछें कि इससे असल में फायदा किसका हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कोई बोनो।
तीसरी बात,
नैतिकता और कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीधे सरल नहीं होते, अक्सर वो ताकत से जुड़े होते हैं। कौन सही है, कौन गलत, ये भी कई बार ताकतवरी तय करते हैं या तय करने की कोशिश करते हैं।
और चौथी, शायद सबसे अहम बात,
हाँ, वो संतुलन वाली बात। हमें एक बैलेंस चाहिए। दुनिया की कड़वी सच्चाइयों यानी यथार्थवाद को समझना होगा, लेकिन साथ ही एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश यानी आदर्शवाद को भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक किनारे पर टिके रहना खतरनाक है।
बिल्कुल, सिर्फ यथार्थवादी हो गए तो शायद जंगल राज हो जाएगा, और सिर्फ आदर्शवादी रहे तो ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे।
सही कहा।
तो ये सब जानने का मतलब क्या है हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर हम इसे अपने आसपास देखें, भारत में देखें, तो सोचिए, मोहल्ले की किसी बहस में या ऑफिस की मीटिंग में भी तो पावर डायनामिक्स काम करते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, किसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, कौन अपने हिसाब से चीजें करवा लेता है, ये सब भी तो शक्ति का ही खेल है छोटे स्तर पर।
सही। या फिर देखिए, कैसे मीडिया में किसी मुद्दे को पेश किया जाता है, कैसे राष्ट्रीय हितों को देश की आवाज या आम जनता की मांग बनाकर दिखाया जाता है।
हाँ,
कार के विचार हले इन सब चीजों के पीछे देखने की, ज्यादा गहराई से समझने की एक नजर देते हैं।
कार की किताब में ऐसी कई लाइनें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं। अगर हम उनके विचारों का सार निकालें, कुछ मुख्य कोट्स जैसे।
हाँ, कह सकते हैं। अब पहला विचार तो यही, राजनीति हमेशा शक्ति की राजनीति होती है।
कितना सीधा और बेलाग सच। ये हमें किसी भ्रम में नहीं रहने देता कि राजनीति सिर्फ अच्छी नीयत से चलती है, पावर इसका हिस्सा है, हमेशा रहेगा।
दूसरा विचार जो बहुत तीखा है, हितों का सामंजस्य असल में ताकतवर गुट की विचारधारा है।
ये हमें सिखाता है कि जब कोई कहता है हम सबका भला इसी में है, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि कहीं ये सिर्फ उनका अपना भला तो नहीं जिसे वो सबका बता रहे हैं। ये चीजों को जस का तस बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है।
बिल्कुल। और तीसरा, जो रास्ता दिखाता है, आदर्शों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है।
हाँ, यानी बड़े लक्ष्य रखो आदर्शवाद, लेकिन उन्हें पाने के लिए दुनिया की असलियत को समझो यथार्थवाद। ये संतुलन क्यों जरूरी है?
क्योंकि बिना आदर्शों के राजनीति सिर्फ शक्ति का नंगा नाच बन जाएगी, और बिना हकीकत को समझे आदर्श सिर्फ वो ख्याली पुलाव रह जाएंगे, टिकेंगे नहीं।
तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े नेताओं या प्रोफेसरों के लिए हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ये कि हम दुनिया की खबरों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को थोड़ा और ध्यान से, आलोचनात्मक नजरिए से देख सकते हैं।
मतलब सिर्फ हेडलाइन या किसी नेता के बयान पर यकीन न करें।
हाँ, सोचें कि इसके पीछे कौन से देशों के क्या हित हो सकते हैं, पावर किधर झुकी हुई है, कौन क्या पाने की कोशिश कर रहा है।
दूसरी बात, हम आज के बड़े टकरावों को, जैसे अमेरिका चीन की खींचतान या कोई और संघर्ष, सिर्फ अच्छा बनाम बुरा की कहानी की तरह देखने से बच सकते हैं।
बिल्कुल। कार हमें सिखाते हैं कि इन्हें अलग अलग देशों के हितों और उनकी ताकत बढ़ाने की कोशिशों के नजरिए से देखना ज्यादा सही समझ देता है। कौन क्या हासिल करना चाहता है, कौन अपनी जगह बचाए रखना चाहता है।
और ये समझ सिर्फ बड़ी राजनीति के लिए नहीं है, हम अपने आसपास भी इसे देख सकते हैं, दफ्तर में, अपने समाज में, शायद परिवार में भी।
हाँ, कौन फैसले लेता है, किसके पास ज्यादा साधन है, किसकी आवाज ज्यादा वजन रखती है, इन डायनामिक्स को पहचानना हमें बेहतर तरीके से चीजों को समझने और शायद उन्हें बदलने में भी मदद कर सकता है।
हाँ, और एक बात और, हम अपने निजी लक्ष्यों में भी ये संतुलन साध सकते हैं, जैसे हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारी उम्मीदें क्या हैं, ये हुआ आदर्शवाद।
और हमारे सामने असल चुनौतियां क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारे पास साधन क्या हैं, ये हुआ यथार्थवाद।
हाँ, इन दोनों को साथ लेकर चलना शायद सफलता के लिए जरूरी है, चाहे वो करियर हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से एक सबसे चौंकाने वाली या कहूँ आंखें खोलने वाली बात ये रही कि कैसे नैतिकता या मोरालिटी जैसी चीज भी जो इतनी पवित्र लगती है वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है पर दुनिया की असलियत समझने के लिए जरूरी है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ आलोचना करना काफी नहीं है। जैसे कार ने आदर्शवाद की आलोचना की, वो जरूरी था लेकिन काफी नहीं।
हाँ।
असल बदलाव के लिए हकीकत को कबूल करना और फिर उसमें बेहतरी के रास्ते खोजना, वो यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच का संतुलन साधना, यही असली चुनौती है। सिर्फ बुराई गिनाते रहने से कुछ नहीं बदलता।
बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर।
कार ने उन वहमों और गलत फहमियों के बारे में लिखा जिनकी वजह से दुनिया दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाई। जरा सोचिए, आज के जमाने में ऐसी कौन सी वहम या आदर्शवादी सोच हो सकती हैं जो हमें शक्ति की असलियत देखने से रोक रही है, हाँ, और जो शायद अनजाने में भविष्य के किसी बड़े संकट की नींव रख रही हो।
इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।